कार्यक्रम हो शमना शिविर लेक्चर नंबर एक। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम सुधारणे नमो अरिहंता नमो सिद्धानं नमो आयतियानं नमो वच्छायानं नमो लोहे सवसाहूं सिद्धे जिनिंद चंदे आयरिय वच्छाय साहुगणे वंद्य सम्मतंसन चरितलद्धिं परुवेम। आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार क्षपणासार ग्रंथ की रचना की और उसी के आधार से यहाँ हम अपने शिविर का विषय है चारित्र मोह की उपशमना, जिसको मुक्षम श्रेणी कहते हैं। विषय शुरू होने के पहले बहुत सारे नए लोग, नए चेहरे भी दिख रहे हैं जिसके कुछ कर्म के बारे में भी मालूमात नहीं है, तो यहाँ तो पहला लेक्चर तो हम जिसको कहेंगे तो प्राथमिक, जिसको कि पारिभाषिक शब्द जो उठाने वाले हैं उस संबंधी हम चर्चा करेंगे। विषय और पुस्तक के आधार से तो बात दूसरे तीसरे प्रवचन से शुरू हो जाएगी। बहुतों ने हमको पूछा है कि हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। सारे केवल ज्ञान लेने वाले जीव है यहाँ बैठे हुए और ये तो साधारण चीज है, ऐसा लगता है जिसका अभ्यास नहीं है उसको ऐसा अंदर से डर लगता है कि यह बात हमको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल समझ में आ जाएगी, इन उसकी चिंता ही छोड़ देना कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आप केजी क्लास में जाते थे तब इंजीनियर बनेंगे ऐसा पता था क्या आपको? पढ़ते गए तो फिर हो गए, है कि नहीं? ऐसे ही है, ये जो कुछ शब्द है हमने कभी पहले सुने नहीं है इसलिए हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। यह कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ तो हम देखो, गुरुदेव ने तो हमें द्रव्यान योग के मूल सिद्धांत सिखाए हैं, आत्मा का अनुभव करने की कला उन्होंने सिखाई है। तो आत्मा का अनुभव होता है, जीव अंतरंग में स्थिर होता है, तो कर्मों में क्या क्या दशाएं होती है इसका भी ज्ञान हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, किसी अपने मनगढ़ंत बातें ये है ही नहीं। केवल ज्ञानी के वाणी में तो जितना द्वादशांग जो हम उनकी वाणी सुनकर गणधरों ने द्वादशांग की, द्वादशांग ने 12 अंगों की रचना की, द्वादश ने 12। तो ये मूल धारा कहाँ से आई है? तो केवल ज्ञानी ने जो ओंकार ध्वनि में उनकी जो बात निकली थी उसमें तो इतना जिसको कहेंगे अर्थ भरा हुआ है कि उसका अनंतवा भाग गणधरों ने ज्ञान में ग्रहण किया। जितना उनमें ज्ञान में ग्रहण हुआ उसका अनंतवा भाग 12 अंग रूप से रचना हुई है। अब 12 अंगों का ज्ञान तो शुरू में तो था, जिसको हम श्रुत केवली कहते हैं उनकी तो परंपरा कुछ साल तक चली, परंतु उसके बाद एक एक अंग का ज्ञान तो नष्ट होना, यानी कुछ कुछ अंश रहते। आपको तो सबको मालूम है, अभी श्रुत पंचमी के दिन सबने स्टोरी तो सुनी है, दर्शन आचार्य ने तो ये जो धारा चली आ रही थी मूल सूत्रों की, तो उसका ज्ञान उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को कराया। फिर उन्होंने षटखंडागम की रचना की। षटखंडागम नाम सुना है कि नहीं सुना? छह खंड जिसको हम कहेंगे, 5 खंडों के ऊपर की जो टीका है जो वीरसेन स्वामी ने लिखी है उसका नाम है धवला, जिसकी अभी सीढ़ी की अनाउंसमेंट हुई ना वो, और छठा खंड है उसका नाम है महाबंध या महाधवला। वो तो ओरिजिनल है, उसकी कोई टीका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा खंड है उसका ग्रंथ है। तो यहाँ हम जो बात देख रहे हैं ये तो भगवान की वाणी है, भगवान की परंपरा से हमारे आचार्यों ने इसको साबुत रखा था, उन्होंने स्वयं सीखा और आगे वालों को सिखाया। द्रव्यान योग हमारे रोज के स्वाध्याय का विषय है और हमने बार बार सुना है कि तो ये व्यवहार है, ये झूठा है, परंतु अभी आपने गुरुदेव के प्रवचन में सुना है ये झूठा है, ऐसा झूठा नहीं कि जिसका अस्तित्व नहीं, व्यवहार नहीं कहा है। नए ये प्रमाण के भेद होते हैं, तो व्यवहार को जानेंगे ही नहीं तो उसको गौण कैसे करेंगे। अभी योगसार के प्रवचन में वो टीवी पर चलता है ना, उसमें परसों ही दिन बात आई थी कि प्रयत्न पूर्वक उसको जानो व्यवहार, क्योंकि उसमें अगर उस संबंध में कोई कंफ्यूजन है, कोई संशय है, कोई विपरीतता है, तो आपको सम्यक ज्ञान होने का चांस ही नहीं है। इन बातों को भले इतने डिटेल में नहीं भी जान सकते हैं, परंतु प्राथमिक कुछ इस संबंधी हमें ज्ञान आवश्यक है। ये जो कर्मों की बात यहाँ हो रही है, ये कर्मों को जानने के लिए हमको कर्मों को नहीं देखना है। ये भेद ज्ञान होने के लिए हम जो द्रव्यानुयोग के सिद्धांत सीखते हैं, उसको अत्यंत दृढ़तापूर्वक हम इसका अंगीकार करते हैं। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि अरे हम आत्मा की दृष्टि करेंगे तो हमारे ये जो कर्म है ना, तो हमारे कर्म तो ज़्यादा मजबूत हो गए, तो ये हटेंगे कि नहीं हटेंगे? क्यों, कुछ कुछ मान्यता हमने ऐसे पकड़ के रखी है क्या? आप इतने गारंटी के साथ कह सकते हैं जितना एक प्रोसिन की गोली खाने पर बुखार आपका 15 मिनट में आधे घंटे में उतरेगा, इतने गारंटी है आपको कि मैं आत्मा का दृष्टि करूंगी या करूंगा और मेरे कर्म हट जाएंगे? नहीं। जितनी गारंटी आपको, जितना विश्वास पैथोलॉजिस्ट के रिपोर्ट ऊपर है, इतना विश्वास आगम पर है? नहीं है। क्यों, किसने देखा? अरे जिसने देखा है वो प्रत्यक्ष देखा है, केवल ज्ञानी ने प्रत्यक्ष जानकर बताया है, और उन्होंने जो बताया वो सत्य बात है, क्योंकि वो वीतरागी और सर्वज्ञ है, उनकी बातें बिल्कुल 100% सत्य है, उसमें थोड़ी भी गुंजाइश ही नहीं असत्य होने की। क्योंकि असत्य कौन क्यों बोल सकता है, बोलो, झूठ क्यों बोलेगा कोई? हाँ, कोई लोभ होगा, कोई छुपाने की बात है, मायाचारी करना है ना? किसी को हंसी मजाक उड़ानी है, ऐसे तो झूठ बोलने के बहुत कारण हैं। एक झूठ का कारण हो सकता है अज्ञानवश, मालूम ही नहीं तो कुछ भी बोल दिया। परंतु ये भगवान का स्वरूप हम निश्चित करते हैं तो सर्वज्ञ है और पूर्ण वीतरागी है, उनमें झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं है। और जो उन्होंने अपना आत्मा का अनुभव करके केवल ज्ञान की दशा प्राप्त की है, तो अरहंत दशा में उसका उपदेश सहज रूप से खिलता है। इच्छा भी नहीं उनको कि ये उपदेश मैं लोगों को बता के फिर मोक्ष चला जाऊंगा, क्योंकि वो वीतरागी है, इच्छा बिना उनकी वाणी खिलती है। और सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज होता है हमेशा, कोई पकड़ पकड़ के नहीं ला सकते। तो वहाँ ऐसे कोई जीव वहाँ पात्र होते हैं जिसको हम गणधर कहते हैं, कि उनकी तो केवल ओम ऐसी सर्वांग से ध्वनि निकलती है, और उस ध्वनि में से पूरा अर्थ पकड़ने की सामर्थ्य जिसकी है, जिसको वो बीज बुद्धि कोष्ठ बुद्धि अलग अलग जो रिद्धियों की बात बताते हैं, तो उसके द्वारा वो उसमें से वो ध्वनि में से उनको वो सब भाषित होता है, फिर वो उसकी रचना करते हैं। तो ये जो मूल गणधरों ने रचना की है, वो आचार्यों की परंपरा से जो चली आ रही है, उसी का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहा मैंने अभी, सिद्धांत चक्रवर्ती, क्योंकि जो हमारे चक्रवर्ती होते हैं, कितने खंड के अधिपति होते मालूम है? 6 खंड के। ये हमारे भी षटखंडागम है, तो ये 6 खंडों के जो विशेषज्ञ है उसको कहेंगे सिद्धांत चक्रवर्ती। ये कर्णानुयोग के ग्रंथों को सिद्धांत शास्त्र कहते हैं। आप कहेंगे सिद्धांत में ऐसा आता है जब कहते हैं, तो इनको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। तो नेमिचंद्र भी सिद्धांत चक्रवर्ती हो गए। उन्होंने जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, त्रिलोक सार, अनेक ग्रंथों की रचना की, ये बृहद द्रव्य संग्रह वगैरह सब उन्हीं की रचना है। तो उन्होंने ये जो रचना की है लब्धि सार, लब्धि में जीव को जो प्राप्ति है उसको लब्धि कहते हैं। आपको कोई पूछेंगे कि शिविर की उपलब्धि क्या हुई है, लब्धि क्या, लब्धि यानी कुछ तो लाभ हुआ हमको, तो ये लाभ किसमें है? तो जीव को अनंत सुख होने में उसका लाभ है, मोक्ष की प्राप्ति उसके लाभ का है। वो कैसे होगी? तो संवर और निजरा से। तो वो कैसी होगी? तो दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि, इसे दो बातें बताई जाएगी। दर्शन यानी सम्यक दर्शन, और चारित्र यानी अंतरंग में स्थिरता। सम्यक दर्शन पूर्वक जो अंतरंग में स्थिरता होती है, जो गुरुदेव के हर प्रवचन में 25-50 बार तो बातें आती ही है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना। तो वो समय दर्शन जब प्राप्त तो होता है, तो जीव के परिणामों में और कर्मों में क्या क्या अवस्थाएं बनती है, इसका यहाँ हम थोड़ा अंदाजा लेंगे। क्योंकि हमें किसी बात की रुचि है तो उसके बारे में अनेक पहलू अनेक उसकी बातें जानने की हमारी स्वाभाविक रुचि है। आपको क्रिकेट की रुचि है तो शाम को कौन जीता इतना समझने से समझ सकता है ना, उसमें समाधान होता है आपका, किसने कैसा खेला क्या क्या किया कौन से साल में किसने कितना किया था रन स्कोर किया था अभी क्या वर्तमान पोजीशन है, ये सब उसके साथ चलती बात है और उसमें हम रुचिपूर्वक इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ तो जीव के ही परिणामों को हमको देखना है। देखो जीव के कल का शाम का रात का प्रवचन जिन्होंने सुना होगा तो उसमें बहुत सारी बातें जिसके द्रव्य की स्वतंत्रता की और ये कर्मों के बारे में समित्व के बारे में हुई थी। तो अभी हम उसी की बात करेंगे कि यहाँ प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, जीव की प्रत्येक अवस्था जीव के स्वयं के अपने कारण से होती है। यहाँ कर्म नामक जो युगल की रचना है वो तो कारमाण वर्गणा से कर्म नामक स्कंध बना है, कारमाण वर्गणा एक खुद युग है तो उसमें से ये कर्म की वो कर्मों की जो अवस्था है वो कर्मों की अपने कारण होती है। जीव की प्रत्येक अवस्था जीव के स्वयं के कारण से होती है परंतु एक ही समय में दो कार्य देखे जाते हैं और हमें लगता है कि इसके कारण ये हुआ उसके कारण ये हुआ तो उसको हम कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या कहा उसको? निमित्त नैमित्तिक संबंध जो एक ही समय में होता है, ना उसके कारण वो हुआ है ना उसके कारण वो हुआ है परंतु कोई हमें कार्य का अंदाजा लगाना है तो वो निमित्त नामक जो कोई पर पदार्थ है उसकी अवस्था को देखकर हम इस कार्य का अंदाजा लगाते हैं जो हमें लौकिक की बात मालूम है। अभी हमारा इतने इसको कहेंगे कि धूप इतनी चल रही थी, हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी, हमें कोई कोई बता रहे थे कोई भोपाल से है कोई इंदौर से है कि इतनी गर्मी हुई है तो गर्मी किसमें नापते हैं, कितनी गर्मी हुई क्या बताएंगे, कितना कितने डिग्री टेम्परेचर हो, यानी वो मर्क्यूरी की जो अवस्था थी बैरोमीटर में वो मर्क्यूरी की अवस्था देखकर उसकी भाषा में आपने बताया हमारे यहाँ इतनी गर्मी थी। हम तो इतना ही कहते हैं हमारे पास ज़्यादा गर्मी थी हमारे पास थोड़ी कम थी पर वो बताने से उसका ख्याल नहीं आता है कितनी, तो हम डिग्री में बातें करेंगे, वो मर्क्यूरी की अवस्था से हम एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बताते हैं। लौकिक में भी हम किसी अन्य की अवस्था से, जैसे आपको पूछा गया अभी प्रवचन कितने टाइम तक चलेगा ये अपना क्लास, तो कहेंगे एक घंटा, तो एक घंटा हुआ कैसे जानेंगे, वो तो समय की अवस्था है, काल द्रव्य का परिणमन है, समय 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 करके एक घंटा बीत जाएगा कैसे जानेंगे आप। तो घड़ी की वो जो सुइयां है वो तो अभी हम 9:30 से 10:30 तक वो काटा गया घंटे वाला, तो आपने क्या समझा एक घंटा बीत गया, कैसे समझा समय गिना है अभी आपने, तो कोई पुद्गल की जो कोई निश्चित आपने किया दिया आप घड़ी देखो या आपके मोबाइल में देखो या जो कुछ करना है उसकी वो पुद्गल की अवस्था देखकर आपने अनुमान लगाया किसका कि एक घंटा बीत गया। आप कहेंगे हमारा बच्चा इतने साल का हो कैसे हुआ, वो शरीर की अवस्था देखकर आपने वो अंदाजा लगाया या आपने दिन गिने जो कुछ है। ऐसे ही यहाँ जो कुछ कर्मों की अवस्था का वर्णन चलेगा, कर्मों को उसमें क्या हो रही है गड़बड़ी उससे हमारे कोई प्रयोजन है, वो तो पुद्गल है जब है वो नहीं कुछ जानता है, जो भी उसमें कुछ नहीं करता है, जीवन कर्म को बांध सकता है ना उपशम करता है ना क्षय करता है। हम किसी को पूछते हैं आपको क्या करना है कर्म में, उपशम करना है कि क्षय करना है, बोलो आप चॉइस इज योर्स। हाँ बोलो बेटा आप क्या करेंगे, अरे हम कुछ कर ही नहीं सकते कर्मों में, जब हम स्वयं अपनी दृष्टि करते हैं तो कर्मों में क्या क्या बातें होती है इसका यहाँ सारा वर्णन है, और जब हम अपनी दृष्टि नहीं करते हैं और ये जो राग द्वेष मोह रूप परिणमन करते हैं तो कर्मों में कैसे कैसे कर्म बनते हैं कैसे कैसे उसके सारे नाम वगैरह बताए शास्त्र में, और फिर उसके फल रूप है तो जीव का अपना भाव और वो जीव स्वयं उसका फल भोगने के लिए कहीं कहीं अन्य गतियों में जाता है, हम कहेंगे इसका ऐसा उदय चल रहा है ऐसा उदय चल रहा है, तो ये उदय क्या है बंद क्या है सत्व क्या है जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपना विषय जो उपशम श्रेणी का है वो एडवांस है, उसके पहले हमने बहुत सारे यहाँ शिविर हुए हैं जो हमने प्राथमिक अवस्थाओं की भी चर्चा की। कोई बात नहीं, यहाँ कोई नए लोग आए हैं और पहली बार सुन रहे हैं और उनको लगता है कि हम समझेंगे कि नहीं समझेंगे, तो हम बिल्कुल प्राथमिक जो कर्मों की बात है टर्मिनोलॉजी उससे शुरू करेंगे। आपको कोई बिगिनर्स को कोई प्रश्न होगा तो बिल्कुल उसका कोई एक शब्द नहीं समझ में आए तो वो लोग पूछना, बाकी जो प्रश्न जो जिसको पूछने हैं, ये हमारी हमेश की तो तरीका है, लिखित रूप से यहाँ प्रश्न दे देना, हरेक के प्रश्न के उत्तर जरूर मिलेंगे यथा अवसर जब उसका विषय आएगा तब, क्योंकि जो जानकार है, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ हमारे धवला जयधवला महाधवला की भी जानकार बैठे हैं, जो रोज के हमारे स्वाध्याय में भी आते, कोई सीडी पर भी सुनते हैं, उनके भी कोई गहन प्रश्न हो सकते हैं, उसके उत्तर जरूर मिलेंगे उन्हें। परंतु चालू ऐसे डायरेक्ट जिसको भी उसने प्रश्न और हमने उत्तर दिया और बाकी सब देखते रहे क्या चल रहा है, जुगलबंदी हमारी चल रही, वो यहाँ नहीं चलेगा। हम सबके प्रश्नों के उत्तर यहाँ देंगे और बेसिक से अभी हम शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ तो कर्मों की जो बातें हैं, तो हमने सुना है कर्म का बंध होता है, तो बंध होता है नहीं क्या होता है उसके बारे में पढ़िए, और होता क्यों है? सिद्ध भगवान को बंध होता होगा नहीं, क्यों नहीं? हाँ कर्म का नाश हुआ तो फिर दोबारा बांधने तो ना, हमारी क्या, हमारी तो कोई वो राग द्वेष ही नहीं करते, क्यों नहीं करते हम? आप क्यों करते हैं? आपको मालूम नहीं राग द्वेष से बंद होता है, क्यों करते हैं? आपको मालूम है राग द्वेष से बंद होता है, और आप दूसरों को सलाह भी देते हो जरा राग द्वेष बंद कर दो, कम करो, आपके हाथ बात है तो बिल्कुल मत करो ना, आप कम करने की क्यों बात करते? कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कहते राग द्वेष मत करो, राग द्वेष कम करो की बात करते, और वो भी गुस्सा कम करने की बात करते, कोई कहता नहीं कि लोभ कम कर दो, थोड़ा धंधा व्यापार बंद करो और थोड़ा स्वाध्याय करो, ऐसा कोई नहीं मिलता है, लोभ कम करने वाला की बात कोई नहीं करता है, क्रोध सबको दिखता है, उसको कम करने की बात होती है, तो नहीं होता, हमको मालूम है क्रोध या क्रोध मान माया लोग बुरा है, फिर भी होता है, क्यों होता है? देखो क्या है, जीव और कर्म अनादि से बंधी हुई ही अवस्था में पाए, ऐसा कभी नहीं था कि जीव प्योर फॉर्म में था और बाद में कर्म आके मिले हो, ऐसा कभी नहीं है। तो पहले में पहली बात क्या है, जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई देखो अभी शब्द आएंगे अनादि अनादि, जिसको आदि यानी बिगिनिंग नहीं है उसको अनादि कहते हैं, जब सादी शब्द आएगा तो स प्लस आदि, जिसको कभी ना कभी बिगिनिंग होती है उसको कहेंगे सादी। एक शब्द है शांत, स प्लस अंत, अंत सही है, कोई तो अनादि से है, अभी मिथ्या तो चला गया तो कहेंगे वो मिथ्या तो कैसा था, अनादि से था, उसका अंत आ गया, अनादि शांत। अब कहेंगे किसी को क्षायित सम में दर्शन हुआ तो अनादि से तो था नहीं, अभी उत्पन्न हुआ कब तक टिकेगा, अनंत काल तक, तो उसको क्या कहेंगे, सादी अनंत। तो ऐसी टर्मिनोलॉजी ऐसे शब्द आएंगे यहाँ पर, तो कहाँ से हम चला गए, चले गए अनादि अनंत से। हाँ यानी जो अनादि से कर्म और जीव का बंधन है, अब कर्म का बंधन है जीव, जीव तो जुदा है, और कर्म नाम के जो कोई पुद्गल के पार्टिकल से पारमाणु वर्गणा कहते हैं, वो यहाँ जीव के मोह राग द्वेष के निमित्त से वहाँ आकर जीव के प्रदेशों में वहाँ कुछ काल तक स्थित हो जाते, उसको कहेंगे बंध हुआ। क्यों हुआ? राग द्वेष के कारण, मोह राग द्वेष के कारण नए कर्म आकर जीव के साथ उसका बंध होता है। पर राग द्वेष ही क्यों होते हैं, तो कहते कि पुराने कर्मों की वजह से, जिसको पुराने कर्म नहीं है वो राग द्वेष मोह हो नहीं सकता उसका। तो तीन बातें एट ए टाइम हो रही है, पुराने कर्मों का उदय, यहाँ जीव मोह राग द्वेष करता है और उसके कारण नए कर्म बनते हैं, तो बंधे हैं तो उसका कभी ना कभी उदय आना है। उदय का अर्थ होता है बंधने के बाद, देखो कर्म का बंध हुआ है ना, जीव के साथ कुछ काल तक वो उसी प्रदेशों में पड़े रहते हैं, उसकी अपनी अपनी कुछ ड्यूरेशन है, स्थिति जिसको कहेंगे, उसके बाद वो पार्टिकल्स कर्म परमाणु छूट कर जीव को छोड़ देते हैं, उसका भी जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता, उस समय उसका फल मिलता है। बंधने के समय कर्म का फल नहीं, वो तो बंधने के समय तो पुराने कर्मों का उदय था, उसका जो कुछ फल मिल रहा था उस समय जीव ने मोह राग द्वेष जो कोई परिणाम हुए उसके कारण नए कर्म बंधे, वो बंधने के बाद कुछ काल तक जीव के प्रदेशों में पड़े रहते हैं। तो जब बंध होता है तो कौन सी प्रकृतियां बंधी, आठ कर्म प्रकृतियां मूल में, जिसको कहने मूल प्रकृति, मूल प्रकृतियों ने कर्मों के मुख्य आठ जो नाम हम सबको मालूम है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतरा, इसको घाती कर्म कहते हैं, वेदनीय आयु नाम और भोग, यह है आघाती कर्म, तो इनका बंध होता है। क्यों? मोह राग द्वेष के कारण इनका बंध होता है, तो उसको कहेंगे प्रकृति बंध। तो प्रकृति बनती है, परंतु वहां तो कितने अनंत अनंत परमाणु बनते हैं, और वो भी कभी हीन कभी ज्यादा, कुछ ऐसा उसका भी हिसाब अलग है, वो भी बनते हैं, उसको कहेंगे प्रदेश बंध। जितने नंबर ऑफ परमाणु एक समय में बनते हैं उसको कहेंगे प्रदेश बंध। प्रकृति जो आठ मूल प्रकृति या उसके जो उत्तर भेद होते हैं सब डिविजन्स, उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। तो कर्म का बंध होता है तो किसी न किसी प्रकृति उनका उसको बंध होता है, तो उसके जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे उसको कहेंगे प्रदेश बंध। दो बातें हुई, उसी समय उस समय जीव का जैसा परिणाम था उसके अनुसार वो कर्म कितने काल तक जीव के साथ पड़े रहेंगे। देखो एक समय में जितना एक लॉट बंधा है उसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध। क्या कहा? एक समय प्रबद्ध, एक समय में बंधने वाला जो परमाणु का लॉट है उसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध। वो बंधे तो एक साथ, परंतु उसका उदय में वो जीव को छोड़ेंगे अलग अलग समयों में, उसमें से एक लॉट एक समय में छूटा फिर दूसरा लॉट, वो एक लॉट में ही ऐसी रचना हो जाती है कि वो अलग अलग समयों में छूटते रहते। तो उसका अंतिम लॉट जब छूटेगा तब तक की जो ड्यूरेशन है उसको कहेंगे उतनी स्थिति बांधी। कर्म बंधने के बाद वो सत्ता में पड़ा रहता है तो उसे कि सत्व हुआ उसका, एट द टाइम जो एक समय में बंधे है वो एक समय में पूरा का पूरा लॉट नहीं छूटता, उसको कहते उसकी निषेक रचना होती। आपने नाम सुनी होगी निषेक। निषेक का अर्थ क्या है? जिनकी स्थिति स्थितियां ने वो एक साथ जो छूट कर उदय में आएंगे या जो जिनकी समान जिनका काल है उसको कहेंगे स्थिति। तो जिन जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति समान है उनको कहेंगे एक निषेक। वो एक लॉट हुआ उसमें अनंत अनंत परमाणु होते हैं तो निषेक किस, क्योंकि ये सब शब्द आने वाले आगे चल रहे, जब आएंगे तब फिर हम उसको याद करेंगे उसका अर्थ क्या है। तो एक निषेक का अर्थ होता है जिन परमाणुओं की समान स्थिति है उसको कहेंगे निषेक। स्थिति की अपेक्षा वो समानता है, उसमें अनुभाग में वेरिएशन होगा उसकी बात नहीं है। तो सत्ता में उसके एक समय में बंधे हुए उसके एक पहला निषेक दूसरा निषेक तीसरा निषेक इसी क्रम से निषेक रचना होगी। निषेक रचना ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कहीं अपने पैर से सिर तक कोई उसमें कतार लगा के कर्म नहीं पाए जाते। कर्म तो जहाँ तहाँ सभी जगह पड़े हैं, जिनमें जिनमें स्थिति समान है उनको हम अपने पेपर पर हमने ड्राइंग बनाई कि कहीं ये हमारा पहला निषेक है, ये सभी परमाणु एक साथ उदय में आने योग्य है, ये उसको कहेंगे। इस तरह से एक समय में जो कर्म बंध है हमने देखा ना, कभी कभी वो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध कितना होता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 यानी हिंदी वाला 70, यानी इतने कोड़ा कोड़ी सागरों में कितने वर्ष हो गए, एक एक वर्ष में कितने समय हो गए, तो प्रत्येक समय में एक एक निषेक पड़ा है। यानी एक समय में बंधने वाले कर्म इतने समयों तक कंटिन्यूस उदय में आने योग्य हैं। अब अलग अलग समय में हर समय बंध चल रहा है, तो हर समय में बंध रहा है तो हर एक की अपनी अपनी निषेक रचना है, और हर एक की मैच्योरिटी अलग अलग उसी दिन मैच्योर उसी समय मैच्योर होने वाले अलग अलग समय में बंध है वो एक साथ उदय में आते हैं। जैसे अपने बैंक में कोई डिपॉजिट है क्योंकि 5 साल पहले रखी है 5 साल के लिए, कोई 2 साल पहले रखे 2 साल के लिए, कोई 1 महीने पहले ही रखी हुई उसकी मैच्योरिटी 1 महीने के बाद आज है, तो आज सबका फल मिलेगा। ऐसे ही जो कभी ना कभी कर्म बांधे हैं पर जिसका जिसका अभी स्थिति पूरी हुई है उसको कहेंगे वो सत्ता वाला निषेक। वो एट ए टाइम उदय में आएंगे, बांधे अलग अलग समय होंगे, पर आज उसका इस समय में उदय आएगा तो उसको कहेंगे उदय रूप निषेक, उसका फल जीव को मिलेगा। क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है हम तो इतने अच्छे हैं, पूजा करते हैं स्वाध्याय करते हैं, हमको ऐसे या ऐसी कंडीशन क्यों है, हमारे ऐसे संयोग क्यों हुए, तो कहने में आता है तुम्हारा ऐसा कर्म का उदय है। ये सुना है ना, तो कर्म का उदय है ना, क्या है? जीव ने ही जो परिणाम किए थे उसके निमित्त से जो कर्म बंधे थे ये कर्म का उदय आया। ये सब हम कर्मों की निमित्तों की भाषा में बोल रहे हो, एक जीव का कोई कर्माधीन नहीं है, जीव स्वतंत्र है। क्योंकि संयोग अच्छे या बुरे किसने, कौन नक्की करेगा अच्छा है या बुरा है? कोई पुद्गल अच्छे होते होंगे, कोई पुद्गल बुरे होते होंगे ना। हमारे पास पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, वो बाकी द्रव्य तो हमको दिखाई नहीं देता, एक पुद्गल द्रव्य तो दिखाई देता है। तो उसमें से कौन से अच्छे पुद्गल और कौन से बुरे, कैसा नक्की करना, जरा हमको कोई उसका माप बता दो। आप कह सकते ना अच्छे हैं बुरे, तो ये क्यों सब चल रही बात है? हमें जो अनुकूल लगता है, बरोबर, हमें जो अनुकूल लगता है, हम यानी किसको, हम यानी जीव तो जानने का कार्य कर रहा है, उसने उसको काला पीला जो गर्म ठंडा इतना ही जाना था, वो अच्छा या बुरा है, किसके लिए अच्छा है? शरीर मैं हूँ और इस मैं के लिए अच्छा ये मानता है, ये उसकी मूल में भूल है। जानने के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं, जानने के लिए तो पूरा गई है, भगवान सबको जान रहे कि नहीं जान, तो उनका कितना इष्ट अनिष्ट लगता है, ख्याल में आती है ना। तो ये क्यों कर्म बनते हैं उसकी यह चर्चा चल रही है। तो यहाँ जो कर्म का उदय जो उस कहने में आता है, क्योंकि आठ कर्म है तो उसके अपने अपने कुछ निमित्तता बनती है, जीव के साथ निमित्तता बनती है, पर निमित्त कुछ नहीं करता कार्य में, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है, नहीं समझे? आप सुबह सुबह पहले में पहले क्या करते हैं, आईने के सामने जाते हैं, ब्रश करने के लिए जाते हैं, जो कुछ है तो दिखता है, तो पहले आप जाते हैं कि पहले प्रतिबिंब आता है, बोलो ना, आपके कारण प्रतिबिंब आता है कि प्रतिबिंब के कारण आप जाते हैं, बोलो बेटा, पहले आप जाते हैं, फिर आईना नियुक्ति करता है कि इसका प्रतिबिंब दिखा है, वो अच्छा दिखाता है कि बुरा दिखाता है, उसी समय आता है कि पहले पहले बीज, हाँ, समकाल है, किसी के कारण कुछ नहीं होता। अच्छा, वो प्रतिबिंब है वो आपकी अवस्था है कि मिरर की है?
मिरर की
है, बोलो, आप कहेंगे हमारी है, आपकी अवस्था है कि मिरर की है? मिरर की। अच्छा, तो मिरर की अवस्था देखकर और यहाँ कुछ काला है तो इधर पूछते कि मेरे को, देखो हमें तो ये निमित्त नैमित्तिक जो बताते हैं, एक ही समय में जो द्रव्यों का परिणाम होता है, इसके कारण वो नहीं, उसके कारण वो नहीं है, फिर भी उसको निमित्त नाम दिया जाता है। निमित्त नाम क्यों दिया जाता है? कि जीव ने ऐसा परिणाम किया अपने कारण, तब सामने कौन सी वहां चीज उपस्थित है उसको अनुकूलता का आरोप आता है, उसको निमित्त कहते। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक ही समय में, कोई उसमें पहला दूसरा है ही नहीं है, फिर भी यहाँ कर्मों का उदय हुआ तो हम उसको इष्ट अनिष्ट करता है, तो जीव स्वयं उसमें राग द्वेष करता है। हमने तीन बातें देखी, पुराने कर्मों का उदय, उदय का अर्थ क्या है, कर्म उस समय वो छूट कर निकल जा रहा है, उसको कहेंगे कर्म का उदय। आठों कर्मों का अपना अपना फल मिलता है, आठों कर्मों का फल मिलता है तो उसमें ज्ञानावरण में तो ज्ञान की हीनता होती है, दर्शनावरण में दर्शन की हीनता हो रही है, क्योंकि जीव का स्वभाव तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। अंतराय के उदय में जो कुछ दान लाभ हुए, जीव के गुण है उसमें भी वीर्य में हीनता हो जाती है। साता असाता का उदय में जीव अनुकूलता का लक्ष्य करके सुखरूप हर्षरूप परिणमता है, या प्रतिकूलता का लक्ष्य करके दुखरूप परिणमता है। आयु में आयु कितनी लंबी है उसका फल मिलता है। नाम कर्म के उदय में बहुत सारी ऐसी प्रकृतियां हैं कि शरीर की रचना और उसमें कितनी हाइट होगी, कितना रंग होगा, कैसी हड्डी होगी, वो सब नक्की होता है। और गोत्र कर्म के उदय में नीच और उच्च गोत्र होता है। तो हमने एक मोहनी को बाकी में रखा, आठ कर्मों का उदय प्रति समय चलता पहले नक्की करो, क्या कहा, प्रति समय आठों ही कर्मों का उदय हो रहा है, बंधन आयु का कभी कभी होता है, सात का तो निरंतर होता है, ये नक्की करना। तो अभी हमने जो देखा, तो ज्ञान की जो हीनता हो रही है, तो मान लेते इतना हमारा केवल ज्ञान स्वभाव है और इतनी हीनता हो गई, हमारा इतना ही ज्ञान प्रकट है, तो जो इतना ज्ञान प्रकट है उससे बंद हो रहा है कि जो अप्रकट है उससे बंद हो रहा है? बल्कि अप्रकट है उससे भी। आप क्या कहते हैं कोई, हाँ हमने ज्ञान की बात पूछी, जो ज्ञान थोड़ा ही प्रकट है उससे बंद है कि बाकी जो ढका हुआ है उससे बंद है। बोलो, मालूम नहीं, जो प्रकट है वो हमारा स्वभाव है, स्वभाव से बंद नहीं हो सकता। और जो है नहीं वो क्या बंद करेगा, जो है नहीं वो क्या बंद करेगा। आप कुछ अन्य भाषाएं नहीं जानते तो आपको बंद हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो प्रकट है वो स्वभाव है, उससे बंद नहीं है। जो अप्रकट है वो है ही नहीं, उससे बंद नहीं। तो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, अंतराय के उदय में नया बंध नहीं होगा, उसके कारण नहीं हो रहा। अब जो अनुकूल संयोग या प्रतिकूल संयोग कह रहे आप, तो संयोगों के कारण बंध होगा कि नहीं होगा? इसमें नहीं होगा, नहीं तो कभी अबंध ही बात दशा ही प्राप्त नहीं होगी। शरीर काला है, गोरा है, ठिंगना है, ऊंचा है, किससे बंद हो रहा है? तो काले शरीर वालों को ज्यादा बंद होता है कि गोरे शरीर वालों को ज्यादा? हाँ, गोरे वालों को। तो नारकियों को बंद होता होगा, देवों को नहीं होता होगा? उनका तो अच्छा शरीर है ना, दिव्य शरीर का, उसके कारण बंद नहीं हो रहा है। नीच कुल या उच्च कुल के कारण बंद नहीं हो रहा है। हमने एक कर्म छोड़ा था, आठों कर्मों का उदय हर समय चल रहा है मोहिनी के उदय में। मोहिनी में दो भेद है, एक है दर्शन मोहिनी, एक है चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के उदय में जो मिथ्यात्व कर्म है, कर्म मिथ्यात्व नाम का कर्म है। चारित्र मोहिनी में वो जो अनंतानुबंधी आदि जो हमारे कषायों के नाम है, वही कर्मों के नाम है, वो कर्मों का उदय है। जीव स्वयं उस समय स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमता है, मिथ्यात्व कर्म के कारण नहीं। यहाँ जीव मिथ्यात्व करता है तो वहां कर्म हाथ जोड़कर खड़ा है निमित्त रूप से, और यहाँ नया बंद होता है। किसका? अकेले मिथ्यात्व का नहीं। मोहिनी के उदय में आठ कर्मों का उदय, उसमें से अकेले मोहिनी के उदय में जीव मोहराग द्वेष करता है, और मोहराग द्वेष के निमित्त से आठों ही कर्म बनते हैं, अकेला मोहिनी नहीं। तो अभी हमें यह पता चला कि अनादि से कर्मों का उदय भी चल रहा है, बंद भी चल रहा है, तो उसमें से कुछ छूटने का मार्ग होगा कि नहीं होगा? तो नक्की होना चाहिए, क्योंकि अनंत जीवों ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की। हर छह महीने आठ समय में 608 जीव नियम से मोक्ष चले जाते हैं। वैसे इतने नित्य निबोध में से ये व्यवहार राशि में आ जाते हैं। तो कलोनी कहीं उसका कोई तो वहां ऐसा उपाय होना चाहिए, क्योंकि उदय तो अनादि से है, अनादि से बंद कर्म तो अनादि का था, उदय भी चल रहा है, और उदय है तो यहाँ बंद भी हो रहा है, और बंधेगा तो फिर दोबारा सत्ता में पड़ेगा, वो तो उदय में आना ही आना है। तो ये ऐसा कुछ चक्र चलना चाहिए कि जीव को सम्यक तो होना चाहिए, सम्यक तो होना चाहिए, नहीं वो मिथ्या तो नहीं करेगा। मिथ्या तो नहीं करेगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मिथ्या तो का उदय रहते हुए जीव सम्यक तो प्राप्त करेगी। ये तीन काल में नहीं बन सकता, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय ही क्या बता रहा है? जीव मिथ्यात्व कर रहा है। ऐसा कभी नहीं कि उसका उदय होते होते यहाँ जीव सम्यक तो प्राप्त करे, यानी ऐसी कोई कंडीशन ऐसा कोई होना चाहिए कि जो कुछ मिथ्यात्व को कुछ देर की जरा रुक जाओ बेटा कि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त कर दो, ये ऐसी पराधीनता नहीं है। जीव स्वयं आत्म का विचार करता है, ये जो गुरुदेव बार बार जो बता रहे हैं, आत्मस्वरूप के चिंतन में वो है कि राग द्वेष रहित में स्वयं कैसा हूँ, वो क्या क्या बताते हैं तो सबको मालूम। उस समय कर्मों में बहुत सारे स्थित्यंतर हो जाते हैं। ये सारे प्रथम ऑप्शन द्वितीय ऑप्शन की बात आपने जो कल सुनी थोड़ी बहुत, और अभी अपनी भी चलेगी, तो उसमें क्या होता है, वो तो दर्शन मोहनी कर्म कुछ काल के लिए उसका उदय रुक जाता है, जो कल अपने उपशम रूप से अवस्था से बात करेगी। यानी कर्मों का जो बंध सत्ता में पड़े रहना, उदय, ये बात तो हर समय चल रही है। तो बाकी कुछ कर्मों में तो कुछ हमें उससे लेना देना नहीं, पहले में पहले कौन रुकेगा उसका उदय? तो किसी मिथ्या तो नाम का उस समय बाकी सब ज्ञानावरणादि का उदय वाले चल रहा है। सबसे पहले समय पहले जब जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो कर्मों में जो दर्शन मोहनी जो मिथ्या तो कर्म का उदय प्रति समय उदय 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 हो रहा था, ऐसी कुछ बातें बन जाती है जिसको हम कहते जीव ने तो ये सब आगम जान लिया है, फिर आत्मा का आत्मसन्मुख परिणाम किए। आत्मसन्मुख परिणाम में तीन करण परिणाम हो गए, उसकी चर्चा आएगी विस्तार से, जिसको अधरकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण कहते हैं। उसमें जीव के परिणामों में कैसी विशेषता होती है, विशुद्धि बढ़ती है, और कर्मों में कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं, उसका सब इसमें वर्णन है। तो उस समय कर्मों में ऐसी ये दर्शन मुनि जो कर्म है उसमें ऐसी कुछ बात बन जाती कि उसमें कंटिन्यूस जो उदय था उसमें बीच वाले कुछ निषेकों में गैप तैयार, अंतर तैयार हो, और वो अंतर का जब समय आता है तब यहाँ जीव अपने स्वयं के कारण सम्यक को प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ जीव में भी अपने अपने परिणामों में कुछ विशेष बातें हो रही है, निर्मलता हो रही है, तत्वज्ञान की निर्णय तक पहुँचने की दशा आ रही है, और वहाँ कर्मों में अपने कारण उसकी अवस्था बनी। ये साइमल्टेनियसली होता है, पर हम बताते हैं कर्मों की भाषा में। निमित्त से कथन करने में कोई दोष नहीं, पर अगर हम मानेंगे कि हम कर्म के ही अधीन है, हमारा कर्म कब जरा आजू बाजू हो जाएगा तो हम प्राप्त करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, कोई पराधीनता नहीं, जीव पूर्ण स्वतंत्र है। यानी एक बात ख्याल में रखना है कि जीव द्रव्य और अन्य सभी द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र है, उसकी कोई भी अवस्था किसी अन्य के अधीन नहीं है। हमारी अवस्था भी कोई भगवान नहीं कराने वाले, कोई गुरु नहीं कराने वाला, कोई दूसरा समझा ले इसलिए समझ में आए, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ जो ये कर्मों की अवस्था के द्वारा हम जीव के परिणाम बताना चाहते हैं तो उसको कहेंगे वो उपशम हुआ। उपशम हुआ यानी उसका उदय कुछ काल के लिए रुका, उसको कहेंगे उपशम हुआ। अब ये उपशम के भी भेद है, प्रशस्त अप्रशस्त, उसकी बात हम बाद में जब उसका एक एक का जब विषय आएगा तब उसकी और चर्चा अधिक से होगी। अभी तो हम केवल उसकी जो सामान्य जो पारिभाषिक शब्द है उसके अर्थ देखते हैं। तो हमने ये बात देखी थी, बंध तो हर समय चल रहा है, और फिर वो बंधन के बाद सत्ता में पड़ा रहता है, उसको कहेंगे सत्व। जब उसकी स्थिति पूरी होती है तो उदय में आते हैं, तो ये आठों कर्मों का उदय तो हर समय चल रहा है। अभी आठों कर्मों में क्या है, उसके बहुत सारे सब डिविजन्स है, जिसको उत्तर प्रकृतियाँ कहते हैं। अलग अलग प्रकृतियों के उदय में उसका अलग अलग कुछ कार्य बनता है। अभी अपना वो विषय नहीं है, क्योंकि कर्मों के बंध वगैरह वो अपना एक अनुशीलन हुआ ना, उसमें बहुत विस्तार से हमने बात की। अभी तो केवल थोड़ी बेस हम तैयार कर रहे हैं। तो उपशम का अर्थ क्या देखा हमने, कि जो कंटिन्यू जो उदय हो रहा था वो कुछ काल के लिए जो गैप होकर जो उपशम होता है, ऐसा उपशम दर्शन मोहनि और चारित्र मोहनि में ही होता है, जिसको कहते हैं प्रशस्त उपशम। प्रशस्त यानी जो अंतर करके लिए जो विस्तार में लेने वाले हैं। देखो यहाँ जो बोर्ड पर जो थोड़ा आप गौर कर सकते हैं, ये द्वितीय उपशम की बात है। ये हम अनादि का जो पहला मिथ्या दृष्टि वो प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त, उसमें भी क्या होता है, मान लेते ये अकेले मिथ्या की प्रकृति का उदय चल रहा था, तो उसमें क्या होता है, जीव के करण परिणामों के कारण। करण परिणाम का अर्थ क्या है, जीव के आत्मसन्मुख परिणाम है। अब जो एक बार करण परिणाम होते ना, अधकरण अपूर्णकरण अनिवृत्ति कर, अभी उसमें जो इंटर हुआ है ना, जीव ने वो इतने आत्मसन्मुखता शुरू की तो अभी वो सम्यक को लेकर ही छूट गया, बीच में से नो रिटर्न। तो उसके यहाँ बीच वाले जो दर्शन होने कर्म थे उसका क्या हुआ, कुछ नीचे आते कुछ ऊपर जाते हैं, और बीच में ऐसी गैप तैयार होती है। नीचे के नीचे एक एक करके उदय में आते रहेंगे, और जब जीव यहाँ आ जाता है इस समय, तो यहाँ दर्शन मोनि कुछ है ही नहीं है, उस समय जीव को जो प्राप्त होगा उसको कहेंगे औषमिक समय। कल जब सुना ना आपने उसको, अभी वो मिथ्या दृष्टिकोण उसको कहेंगे प्रथम औषम समय। इसके डिटेल में तो हम बाद में जाने वाले हैं, परंतु ऐसा भी होता है कि जो कर्म उदय में आ रहा है, परंतु अभी जैसे हमारे क्रोध मान माया लोभ सभी कर्मों की अपनी अपनी निषेक रचना है, तो हमने क्रोध किया तो वहाँ तो सारे परमाणु पड़े हैं ना, क्रोध के भी मान के भी माया के भी और लोभ के भी, तो जीव यहाँ क्रोध करता है तो क्रोध का उदय कहलाता है। तो बाकी जो उनका उदय नहीं होना, क्रोध का उदय होना, तो जिसका वहाँ उदय नहीं हो रहा है उसको भी उपशम कहेंगे, वो वाला उपशम नहीं, उसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम। सत्ता में पड़े रहना, उदय में नहीं आना, बस इतना जिसका चल रहा है, जैसे आपने कोई कर्म बांधे और उदय में नहीं आ रहे तो उसको क्या कहेंगे, अप्रशस्त उपशम। उसकी और चर्चा जब अपना विषय चलेगा तब हम करेंगे। जैसे किसी ने वो प्रथम उपशम सम्यक को प्राप्त किया तो उसके तो दर्शन होने में ऐसा अंतर होकर ऊपर की जो है वो उपशमित हुआ, वो अपना जगह छोड़कर उदय में नहीं आ सकता। तो इतने काल तक जीव ने सम्यक तो प्राप्त किया, उस समय अनंतानुबंधी का क्या होता होगा? उसमें कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ता है, अनंतानुबंधी तो पड़े भी उदय के समय से लेकर, तो उदय में आते आते वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन रूप होकर एक समय में टर्न होकर उदय में आता, उसको कहेंगे अप्रशस्त उपशम। उदय में नहीं आना, सत्ता में पड़ा रहना। अगर उदय की उनकी स्थिति पूरी हुई तो उनके सजातीय अन्य प्रकृति रूप होकर उदय में आते कन्वर्ट, एक समय के लिए पूरा सत्ता में से कन्वर्ट नहीं होते, उदय में आते आते वो कन्वर्ट होकर उदय में आते, उसको कहेंगे अप्रशस्त उपशम। ऐसा अप्रशस्त उपशम जो ऊपर के निषेकों में पड़े हैं, वर्तमान में उदय रूप नहीं हो रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? है पड़े हैं, अभी उन परमाणुओं का उदय नहीं हो रहा, ऐसा तो आठों कर्मों में होता है। परंतु ये जो गैप वाला उपशम है जिसको हम कहेंगे प्रशस्त उपशम, वो मात्र दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय में ही होता है। आपने पांच भावों में से औक्षमिक भाव के नाम सुने होंगे, कितने होते हैं औक्षमिक भाव? दो। कौन से? औक्षमिक सम्यक्त्व और औक्षमिक चारित्र। औक्षमिक सम्यक्त्व में जो प्रथम उपशम जो मिथ्या दृष्टि जो प्राप्त करता है वो प्रथम उपशम सम्यक्त्व, और जो सातवें गुणस्थान वाला उपशम श्रेणी चढ़ने के पूर्व प्राप्त करता है वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व। ऐसे उसमें दो भेद। तभी हमने बंध क्या है देखा, सत्व यानी सत्ता में पड़ा रहना, उदय यानी तो जीव को जब वो छोड़कर चले जाते हैं तब उसका कुछ निमित्त बनता है, तो हम कहेंगे कर्म का फल मिला, उदय हुआ है ना उस कर्म का फल मिला, फल मिला है ना जीव ने वैसा नैमित्तिक भाव किया तो हम कहेंगे कर्म ने फल दिया। ये भाषा यहाँ किया या जीव ने उपशमाया, जीव ने बांधा, जीव ने क्षय किया, ऐसी होगी भाषा है ना, वो कथन में कोई दोष नहीं है। अगर मानेंगे कि जीव ने उसमें कर दिया तो दोष, क्योंकि कर्णानुयोग की कथन पद्धति निमित्त के द्वारा किया ऐसा करने की होती है, हर एक अनुयोग की भाषा अलग अलग है। जैसे प्रथमानुयोग तो क्या कहेंगे, वो चक्रवर्ती था, उसने ऐसा किया, इतना चौखंड जीत लिया, फिर उसने मुनि दीक्षा अंगीकार की, ये क्या था जो कुछ हो स्टोरी रूप से होगी, वो प्रथमानुयोग है। द्रव्यानुयोग में सिद्धांत बताए जाते हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, निमित्त नैमित्त दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, वो उसमें कुछ नहीं करता, ये द्रव्यानुयोग के सिद्धांत है, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता बताई जाए। चरणानुयोग में ऐसा करना चाहिए वाली बात है, उपदेश की बात है। तो यहाँ तो कहते हैं जीव दूसरे द्रव्य का जीव का कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ कहते कि वो परजीवों की आपको दया पालनी चाहिए, षटकाय जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये इसका हिंसा का त्याग करना चाहिए, वो चाहिए वाली भाषा वो चरणानुयोग की भाषा। कर्णानुयोग में कर्ण है परिणाम, यहाँ सूक्ष्म वर्णन पाया जाता है जीव के भी परिणामों का और कर्मों की अवस्था, ये उसकी भाषा अलग अलग है प्रत्येक अनुयोग की, ऐसा उसमें कोई विरोध नहीं है। आप कहेंगे यहाँ व्यवहार से कथन करते हैं और समयसार में सब निश्चय का कथन है, तो कौन सा सच मानेंगे हम? दोनों ही सत्य है, ये सत्य बात है, क्योंकि इनके द्वारा हमें ये जीव के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं कर्मों को देखकर। तो यहाँ भी हमने उपशम क्या है देखा, एक शब्द आता है उदीर्णा। उदीर्णा का अर्थ है क्या? देखो अभी हमने देखा निषेक रचना होती है, सत्ता का जो निषेक है, नीचे का नश्यक है उदय रूप निषेक, उसके ऊपर का निषेक उसके नेक्स्ट समय में उदय में आने वाला, फिर उसके ऊपर ऐसे हम नीचे से ऊपर तक ऐसी लाइन बताते हैं, जैसे यहाँ जो कुछ बातें बताई ना, इसको कहते हैं निषेक रचना है। अभी इसको नीचे का भूल जाओ, इसका पहले समय में अभी उदय में है, फिर दूसरा ये उदय में होगा, इसको निषेक रचना कहते हैं। तो ऊपर के ये वर्तमान का अगर ये उदय रूप निषेक है, तो ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु, देखो परमाणु सत्ता में जिस अवस्था में बंधे पड़े हैं निषेक रचना होकर उसी रूप में कायम रहते, ऐसी कोई बात नहीं है, परमाणु उसमें से कुछ नीचे कुछ ऊपर चलती रहती बात। तो परमाणु अपनी स्थिति से उनकी स्थिति कुछ घट जाना, स्थिति का घटना हमारे ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, ऊपर से नीचे आए, ये ग्राफ है, या कर्मों को ऊपर नीचे नहीं कर रहे हम, कैसे दिखाएंगे उसके ऊपर के निषेकों में थे यानी स्थिति लंबी थी, अधिक काल के बाद उदय में आने वाले थे, अब उनकी स्थिति कम हुई तो क्या करेंगे हम, उसको नीचे के निषेक में आए ऐसा करेंगे, उसको कहीं उसका अपकर्षण हुआ, अपहरण कम हो गया। कभी कभी क्या है, उदयावली ने नीचे की एक आवली छोड़कर ऊपर के जो निषेक है उसमें से कुछ परमाणु ऊपर चले जाते, और उसके लिए कंडीशन है, उस समय उसका बंद होता होगा तो ही उत्कर्षण होता है। अपकर्षण तो सभी में होता रहता है और हर समय होता है, उसमें जीव के पुरुषार्थ से होता है ऐसा कुछ नहीं है। ये निषेक जैसे बंधे पड़े हैं, जैसे जिसमें जिसमें स्थिति है उसमें से कुछ स्थिति का घटना, स्थिति का बढ़ना, ये तो ऑटोमेटिक बिना जीव के पुरुषार्थ से ऐसा चलता रहता है। ये स्थिति घटकर नीचे आ जाना परमाणु, उसको कहेंगे अपकर्षण हुआ, और नए बंध के साथ वही ऊपर तक चढ़ जाते हैं। अब ऊपर पर कहाँ तक चढ़ते हैं उसकी भी लिमिट है, नहीं तो आप कहेंगे अनादि से ऊपर चढ़ते 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 कोई ऐसे परमाणु है कि अनादिकाल पहले बंधे थे, ऐसा कोई होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उसकी अपनी शक्ति स्थिति तक ही ऊपर चढ़ते, अपने बंध के समय से लेकर जो प्रत्येक कर्म की अपनी कुछ उत्कृष्ट स्थिति कितनी पॉसिबल है उसको बताया जाता है। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी साथ। तो देखो कोई एकेंद्र जीव है, एकेंद्र कोई बादल एकेंद्र पर्याप्त, वो कितनी स्थिति बांध सकता है मिथ्यात्व की? तो एक साथ, उससे ज्यादा तो नहीं बांधता। अब वो जीव पंचेंद्रिय हुआ, संगी पंचेंद्रिय, तो संगी पंचेंद्रिय होकर उसने बहुत संकलेश परिणाम से 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी। तो एक सागर में इतने पड़े हुए परमाणु कितने ऊपर तक चढ़ सकते हैं? 70 कोड़ा, पर उसने बंद के समय से कितना टाइम बिताया वो भी उसमें कंसिडर, यानी क्योंकि अभी तो वो एकेंद्रिय में से आया है तो उसका सागर का स्थिति बंद होता है, तो सागर प्रमाण काल में तो उसके समय सभी कर्म नष्ट होने चाहिए थे। शास्त्र में ऐसा वचन आता है कि कोई ऐसा जीव है लंबे काल से एकेंद्रिय में था, अब वो पंचेंद्रिय ने त्रस हुआ है, अब वो त्रस की स्थिति कितनी आपने साल भी नहीं सुनी है ना, 2000 साल। वो एक सागर का कर्म बांध के आया था, मिथ्या तो कर्म की बात है, तो उसका वो सागर का कर्म 2000 सागर तक रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक ऊपर चढ़ सकता है, मान लेते ना, उसने कभी 1000 वर्ष पहले बांधा था, मान लेते 1000 एक पंचेंद्रिय में आने के पहले 1000 वर्ष पहले वो एकेंद्रिय में उसने बांधे थे, और वो अभी आया है, 1000 वर्ष कम कर दो 70 कोड़ा कोड़ी, इतने वो कुछ परमाणु ऊपर चढ़ सकते, कुछ परमाणु, तो 2000 सागर के अंत तक रहेगी कि नहीं रहेगी? हम कोड़ा कोड़ी की बात करें और यहाँ 2000 सागर बहुत छोटा काल है उसके सामने। शास्त्र में ऐसा आता है, जिसमें सुना होगा हमने जयदेवला ने, कि 2000 सागर के अंत में कोई भले वो तीर्थंकर का भी जीव क्यों नहीं, कोई उस समय श्रेणी चढ़ने वाला होगा, तो 90 गुणस्थान में उसने एक दो ने असंख्यात एक इंद्रिय के पर्यायों में जो कर्म बांधे उसकी सत्ता पर ली, किसी एक जीव की बात नहीं। जब 2000 सागर के अंतिम भव में कोई मोक्ष जाने वाला जीव है तो वो जब श्रेणी चढ़ता है तो 90 गुणस्थान में कौन से कर्मों की सत्ता है, तो वो असंख्यात एक इंद्रियों में जो एक इंद्रियों के भव उसमें बंधे हुए कुछ परमाणु वहां पर पड़े, पता नहीं ना उनको हम क्या करते हैं और क्या क्या कितनी क्या पॉसिबिलिटी है उसकी चर्चा करना। हमें तो ऐसा लगता है हमने इस भव में क्या किया, बस इसको हम सोचते हैं, कहाँ के कर्म परमाणु कैसे, उसकी जो कुछ जो थियोरी है ये तो भगवान ने बताई, उन्होंने जानी हुई बातें उन्होंने बताई हुई, आगम के द्वारा तो हम उसका अनुमान लगाते हैं, तो यहाँ तो हमें वो क्या होता है उसकी चर्चा है। तो यहाँ अपकर्षण उत्कर्षण की बात चल रही है, यानी बंधे हुए कुछ कर्म परमाणु, देखो पूरा का पूरा निषेक ऊपर नीचे नहीं होता है, उस निषेक में से कुछ परमाणु उसका अपकर्षण होकर स्थिति घड़ भी सकती है, उत्कर्षण होकर स्थिति बढ़ भी सकती है, ये तो हम स्थिति की बात करें। अब उसका जो अनुभाग है, फल देने की शक्ति, डिग्री उसकी, इंटेंसिटी, वो भी कम ज़्यादा होती है, यानी वर्तमान में जो हम परिणाम करते हैं उसके कारण नया कर्म तो बनता ही बनता है, पुराने बंधे हुए सत्ता में पड़े हुए कर्मों में ये कुछ तो अपकर्षण होता है, कुछ का उत्कर्षण होता है, कुछ का संक्रमण है, अन्य कर्म रूप हो जाते हैं, पुण्य से पाप, पाप से पुण्य, ऐसा भी होते हैं। और उसमें उस उदीर राय ने उदयावली में आकर अधिक मात्रा में खिर जाना, ऐसा भी हो सकता है। यानी कर्म जैसा बंदा है वैसे ही पोजिशन में पड़ा रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। और हमें कर्म से डरने की क्या बात है, क्योंकि हमने देखा था जिस समय जीव तत्व विचार में लग जाता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडल मल जी साहब कहते इस जीव का तो इतना ही कर्तव्य है कि तत्व विचार में तद्रूप होकर लग जाए। उस काल में कर्मों में ये सब बातें होती रहती, ऑटोमेटिक उपशमादि अवस्थाएं। हमें तो लगता है कुछ करने से होगा, क्या करना चाहता है, क्रियाएं, भाव भी नहीं, क्योंकि उसने तो शुभ क्रियाओं को ही शुभ भाव माना है, और वो शुभ भाव से धर्म होता है ऐसा माना है। हमने क्या माना है, शुभ भाव से धर्म है। ये हमारी बहन आई, हम 1975 में धर्मचक्र यात्रा में गए, यहाँ आज बहुत सारे लोग आए ना, आप आए ना अहमदाबाद चल वहाँ बाबू भाई मेहता ने यात्रा निकाली, और हमें यात्रा की इतनी रुचि अंदर कि मैं भी, हम दोनों भी हमारे सास ससुर के साथ उनके लिए यात्रा में जुड़ गए। इच्छा क्या थी कि अपने को यात्रा मिले, ये प्रवचन वगैरह कुछ नहीं मालूम था, कभी समयदार का नाम भी नहीं सुना था, अभी कुछ कुछ शब्द ऐसे सुने हुए थे, परंतु यात्रा का शुभ भाव था तो हम उसमें गए। तो ये बाबू भाई मेहता, हमारी कंडीशन 1000 लोग हम यात्री थे, 17 बसेस चलती थी, आज एक बस आई तो रहने की कितनी क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ती आप देख लो, और उस जमाने में क्या पोजीशन होती होगी इनको सबको मालूम है। उस समय में हमने वो धर्म किसको कहना ये बात समझी पड़ी, ये हमारा टर्निंग पॉइंट था जीवन का 1975 में धर्मचक्रिया। पहली बार सुन रहे थे सर, कंडीशन थी रोज चलेगी बसे, पर रोज के प्रवचन होगी, रोज के 2-3 जो उनकी, कभी कभी तो रास्ते में बस बिछा दिया और वहां रुक कर प्रवचन हो गए। जंगलों में हमने कितने कितने ऐसे रास्ते में काटे तो वहां हमने पहली बार सुना कि धर्म किसको कहें। तब तक तो ये धर्म किसको समझते थे, यात्रा करना, मंदिर में जाना, दशलक्षण में उपवास करना, जो कुछ है बस अपना हो गया था। पहली बार तब हमने सुना क्या होता है धर्म, ऐसे कभी इसको भी पहली बार है हमारे कि इसके बारे में भी, ये भेद ज्ञान करने के लिए हमें जो कुछ कार्यकारी पड़ता है, ये कर्म की बातें भी, कर्म को हमारे कोई कसरत नहीं करनी, इंटेलिजेंस उसके लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, ये सब बातें हमें भेद विज्ञान के लिए अत्यंत कार्यकारी होती है। जब तक इसका अभ्यास नहीं होता है तब तक उसकी वैल्यू नहीं समझती। हाँ, जो द्रव्यान योग के सिद्धांत तो पहले में फॉरमोस्ट है, उसको तो रखना है, और उसके साथ साथ इसका अभ्यास करेंगे तो वो तो एकदम कार्यकारी हो जाती है। तो यह अभी हमने देखा था कि जो उदीर्णा भी होती है, उपशम भी होते हैं, आकर्षण उत्कर्षण, ये सभी बातें, और भी नाम बहुत हमने सुने, निधत्ति क्या होता है और निकाजित क्या होता है, सबका हवा बना के रखा है, ऐसे ऐसे कर्म होते हैं जो अभी हमने देखे, जिस फॉर्म में वो निषेक में परमाणु पड़े हैं, कुछ परमाणु नीचे आते हैं, कुछ परमाणु ऊपर जाते हैं, कुछ परमाणु अन्य प्रकृति यानी सजाती अन्य प्रकृति होते हैं, जैसे क्रोध मान माया लोभ के परमाणु है, क्रोध के मान माया लोभ रूप, मान माया लोभ के उस रूप, ऐसे आपस में उसका संक्रमण चलता है, जैसे ऑटोमेटिक, उसके लिए कुछ नहीं करना है, जीव को जीव के करने से नहीं होता, वो ऑटोमेटिक उसमें चलता है। जैसे ज्ञानावरण के 5 वेद है, मति ज्ञानावरण, सुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, वो भी आपस में संक्रमित होते रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं अपने, मगर उसका जो इसको संक्रमण कहते हैं, तो ये किसी में ऐसे संक्रमण होता है, कुछ परमाणु उदीर्ण होकर उदयावली में आकर जल्दी घिर जाती है, तो जिसमें ऐसा किसी में अपकर्षण उत्कर्षण होता है, उदीर्णा नहीं होती, किसी में अपकर्षण उत्कर्षण भी नहीं होता, संक्रमण भी नहीं होता, उदीर्णा भी नहीं होती, तो उसके लिए वो निधत्ति निकाचित और वो उपशम वगैरह नाम है। उसके बाद जब हम चारित्र मुक्ति उपशम ना करेंगे तब डिटेल नहीं करेंगे, तो हमने वो उसका हवा बना दिया कि ऐसे कर्म बांधे हो गए तो क्या होगा। मान लो कोई आपके पुण्य के परमाणु है और उस समय अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हो निषेक की, कुछ तो अपकर्षण उत्कर्षण हो रहा है, कुछ का संक्रमण भी हो रहा है और कुछ अपने जगह में स्थित है, तो उससे आपको क्या लेना देना है। वो कहे ऐसा कुछ कर्म नहीं है। हाँ, मगर उसमें क्या है, जो कर्मों की स्थिति बन रही है, वो कट डाउन जिसको होते हैं, जो स्थिति कांड घात नाम से हम बाद में देखेंगे, तो वो होने के लिए वो कर्मों में कुछ नहीं हो सकता उसका, तो उसके लिए वो तो अनिवृत्तिकरण के परिणाम में वो भी बातें नष्ट हो जाती है, जिसको कहेंगे जिनमें दर्शन से वो नष्ट होता है, उसकी चर्चा करेंगे जब उसका विषय आएगा। तो ये हमने तो कर्मों में ऐसे कोई अरे ये निगत्ति वाले हो गए, अरे ये निकाचित वाले हो गए, तो कौन सा कर्म ऐसा अच्छा है कि आपको नहीं चाहिए ऐसा? आठों कर्म का नाश होना चाहिए कि कुछ बाकी रखना चाहिए? आयु कर्म रहे तो कुछ हर जाए आपको, अपने मनुष्याई चलती रहे, दुख हो रहा है क्या? अरे उल्टा तो आयु नष्ट होने का प्रसंग आवे तो दौड़ लगती है, कहाँ पर? डॉक्टर के पास। यहाँ का नहीं डॉक्टर तो अमेरिका का कुछ करेगा, लंदन का कुछ करेगा, है ना? तो दुबई वाले तो यहाँ दौड़ के आते, क्यों? हमारी बहन आई है दुबई से, यानी हमने क्या समझाया है? ये तो कर्म के कारण हमको कुछ उसका भुगतना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये तो सारे हम द्रव्यान युग के हर प्रवचन में, ये हमारे तो कितने तो विद्वान बैठे हैं, वो तो और उनको भी सिखा रहे, क्यों क्यों मिले जो? यही तो हम बात देखते हैं ना, कर्मों की कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, वो मोहराग द्वेष के लिए भी निमित्त भी क्यों ना हो, परंतु तो हमने मोहराग द्वेष के साथ ही नाता छोड़ दिया तो कर्म क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे। जब हम द्रव्यान योग के सिद्धांत सही रूप से समझ कर वो अपना दृष्टि करते हैं, अपनी दृष्टि करते हैं, तो ये किस तरह से ये तीन कर्म परिणाम होते हैं, किस तरह से कर्मों में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, इन सब का ज्ञान कराया जाता है। ये ज्ञान करने से अभी हमको उपशम करना है कि अनिवृत्तिकरण करना है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे ज्ञान का गेय है। और जब हमें तो तत्व विचार करना है, तत्व विचार करना है, इन्हें क्या करना है? जो द्रव्यों की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, जो ये हम रोज सीखते हैं उसी की बात करना है, तो ये सहज स्वयमेव होने वाली बात है, उसकी सब यहाँ चर्चा चलेगी। क्योंकि देखो यहाँ तो एकदम पहले तो अपना एक विषय हो गया है कि प्रथम उपशम सम्यक्त्व, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व, शाही सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, सभी सम्यक्त्वों की चर्चा हुई थी, सम्य दर्शन का शिविर हुआ था, आपको याद होगा। अभी हम डायरेक्ट चारित्रमुखी उपशमना वाला जो विषय है उसको लेने वाले हैं, उसमें जो जो कुछ शब्द आएगी उस संबंधी उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक शब्द आता है अनुभाग के बारे में, तो उसका नाम है स्पर्धा, अनुभाग को बताने वाला, यानी अनुभाग कम है या अनुभाग अधिक है, ये किसमें गिनते हैं? तो कहेंगे उसकी शक्ति में गिनेंगे, उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद इज अ यूनिट ऑफ पावर, उसकी शक्ति। कर्म की शक्ति उसमें है, जीव की शक्ति उसमें है, जैसे ज्ञान की शक्ति ज्ञान में, श्रद्धा की शक्ति शक्ति में, श्रद्धा में, वीर्य की शक्ति वीर्य में, ऐसे कर्मों की शक्ति नापने का जो कुछ यूनिट है उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद, वो कर्मों के अपने अविभाग प्रतिच्छेद। और उसमें जो फल देने की शक्ति है, जैसे हम पानी का टेम्परेचर वो डिग्री में नापेंगे, वैसे वो कर्मों की शक्ति हम अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं। तो ये अविभाग प्रत्येक परमाणु में अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद है, एक एक परमाणु को यहाँ वर्ग कहेंगे, कर्म परमाणु को एक एक को वर्ग कहेंगे, उसमें अपनी अपनी फलदान शक्ति है। जिन जिन परमाणुओं में समान शक्ति है, समान फल लेने की शक्ति है, जिसमें समान डिग्री है, जैसे हमने समान स्थिति वाले परमाणु को निषेक कहा था, वैसे जिनमें जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद है ऐसे परमाणुओं को समूह को हम वर्गणा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गणा। मान लेते ना 100 डिग्री है सब में, तो 100 100 100 100 वाले जितने परमाणु हैं उसको हम एक लाइन में लिखेंगे, जैसे हमने निषेक को लिखा था। निषेक की रचना जुदी है, अनुभाग की रचना जुदी है, दो रचनाएं जुदी है। निषेक में ही वो घोटाला मत कर, निषेक में ऐसा नहीं कि नीचे के निषेक में अनुभाग कम है ऊपर की ज़्यादा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक निषेक में अनुभाग हीन से अधिक तक सभी में पाया जाता है। स्थिति में ऐसा नहीं, स्थिति में नीचे का निषेक जल्दी उदय में आएगा, ऊपर के निषेकों में परमाणु बाद में उदय में आएंगे। अनुभाग में प्रत्येक निषेक में हीन से अधिक तक सभी अनुभाग पाए जाते हैं। किस रूप में उदय में आता है उसमें वो जीव के परिणामों के अनुसार उसका उस रूप अनुभाग का उदय होगा, पर पाए जाते हैं सभी। तो ये अनुभाग नापने का जो है उसको कहेंगे यहाँ वर्गणा। और वर्गणाओं के समूह को कहेंगे स्पर्धक। अब उस संबंधी जो अधिक चर्चा है वो हम आगामी जब उसका विषय भी आएगा ना तो उसको और वो स्पर्धकों को वगैरह जहाँ उसका विषय आएगा वहाँ समझाएंगे। अभी हम यही रुकते हैं। बोलो चौबीसों भगवान।